जब परवाज दी, मैंने खुद को तबला आवाज दी, मैं चल पड़ी अब कोई भी रोको ना। मेरी सोच को जब परवाज दी, मैंने खुद को तबला आवाज दी, अब रोको ना। मुझे हर विषय मंजूर नहीं, मुझे हर विषय मंजूर नहीं, मंजिल भी अब दूर नहीं। खुद क्षमा मैं जलाऊंगी इन राहों पे, मैं ही हूँ मेरा रहनुमा। खुद क्षमा मैं जलाऊंगी इन राहों पे,
शांति। रूहानी क्रांति के सूत्र श्रृंखला की इस कड़ी में आज आप सभी का स्वागत है। और आज का विषय है रूहानी ताकत। अव्यक्त मुरली, 28 जनवरी 1974। इस मुरली में बाप दादा हम बच्चों को एक योद्धा के रूप में देख रहे हैं, एक वॉरियर के रूप में देख रहे हैं, एज ए कमांडर। ओसी बाबा हमें मोटिवेट करते हुए हमारे अंदर क्रांति लाने के लिए हमें बता रहे हैं कि बच्चे आप युद्ध स्थल पर हो, एक योद्धा हो। आगे बाबा बताते हैं कि कभी कभी आप कहीं आप योद्धेपन को भूल तो नहीं जाते हो, अपने सुखद सुख साधनों में, अपने जो संपत्ति है अपने ऊपर यूज करने में, उसमें कभी आप इस योद्धेपन के नशे को भूल तो नहीं जाते हो। एक योद्धा का जो जुनून होता है, जो लगन होती है, जो परम लक्ष्य होता है, वो होता है विजय की प्राप्ति। एक योद्धा जब युद्ध पथ पर आगे चलता है तो अपने सारे मोह ममता, सारे रिश्ते नाते, सारे संबंध, यहाँ तक कि अपने जीवन के मोह को भी वो पीछे छोड़ देता है और फिर आगे बढ़ता है। और एक योद्धा को जीतने के लिए चाहिए होता है उसका आत्मविश्वास, उसका जुनून, उसका जज्बा, उसका मनोबल, उसका समर्पण भाव और अंततः ईश्वर में संपूर्ण निश्चय। परंतु इस मार्ग पे चलते चलते कभी कभी कुछ ऐसी बातें आती हैं जो हमें इस मार्ग से विचलित कर देती हैं, हमें इस मार्ग से भटका देती हैं। उनके तरफ बाबा अटेंशन दिलाते हुए कहते हैं कि बच्चे आप जब इस मार्ग के तरफ आगे बढ़ोगे तो आपके कर्म के फल के रूप में, आपके सेवाओं के रूप में जो साधन की प्राप्ति होगी, जो कर्म के फल की प्राप्ति होगी, जो महिमा की प्राप्ति होगी, उसे स्वीकार नहीं करना है। अगर इस फल को अभी स्वीकार करेंगे तो जो कर्मातीत स्थिति का स्टेज है, जो तपस्वीपन का फल है और जो अतीन्द्रिय सुख का फल है, ये सभी मिस हो जाएंगे। जब हम पुरुषार्थ के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, जब हमें कोई नहीं जानता है, हम अपने ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं और ऐसा लगता है कि हमारे अंदर तो ये मान शान की प्रतिष्ठा की कामना तो है ही नहीं, हमें तो कुछ चाहिए नहीं, हम तो बिल्कुल निष्काम भाव से हैं। और जब अपने बड़े भाई बहनों को देखते हैं जो आगे जा चुके हैं, उनके अंदर थोड़ा भी कुछ दिखता है तो उनकी कमी कमजोरों को देखते हुए उनके ऊपर हम पॉइंट आउट करते हैं और कहते हैं, विचार करते हैं, इनसे अच्छे हमें। परंतु जब हम उस मार्ग पर पहला कदम रखते हैं, और जब हमें लोग जानने लगते हैं, लोग पहचानने लगते हैं, हमारी महिमा करने लगते हैं, तब पता पड़ता है कि महिमा स्तुति मान सम्मान क्या बला है। फिर वहां से हमारा रियल पुरुषार्थ चालू होता है। वास्तव में जब हम कर्म कर रहे होते हैं, जब पुरुषार्थ कर रहे होते हैं, तो जब हम कर्म का बीज बोते हैं, उसके साथ साथ ही हम सूक्ष्म में कुछ न कुछ इन कमी कमजोरियों का भी बीज बो देते हैं, और हमें पता नहीं पड़ता है। हम जो भी सेवाएं दे रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, उसके पीछे क्या इंटेंशन है हमारा, हमारे कितनी महत्वाकांक्षा है। हम इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि ताकि हमें लोग जानने लगे, हमें लोग पहचानने लगे। इस सूक्ष्म में यदि कामना बैठी हुई है, तो हमें हमारे मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ते, जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वो भी एक धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेगा, और एक आगे चल के विशाल वृक्ष का रूप धारण करनेगा। मान सम्मान की कामना, महिमा की कामना, सल्वेशन साधन, इन सब की कामनाएं भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जैसे एक किसान खेत में फसल बोता है, तो उस फसल के साथ साथ अनावश्यक रूप से खरपतवार घास फूस आ जाते हैं, और यदि उसको समय रहते नहीं निकाला गया तो उस फसल की शक्ति को छीन कर देती है, और जो फल लगता है वो भी ताकत वाली नहीं रहता है। ऐसे जब हम भी प्रोग्रेस करते हैं, उन्नति करते हैं, तो उस उन्नति के साथ साथ हमारे अंदर अहम की भावना, ईगो, वो मान सम्मान की भावना भी धीरे 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 डेवलप होती है साथ साथ में। जब हम बीज डालते हैं खेत में, उस समय तो कोई घास फूस, कोई खरपतवार नहीं रहता है, लेकिन वो जमीन के अंदर छुपे रहते हैं उनके बीज। ऐसे ही हमारे अवचेतन मन में भी जन्म जन्मांतर की ये कामनाएं छिपी हुई रहती हैं, और जब जैसे ही उसे धूप और पानी लगता है, जैसे हमारी उन्नति होती है, इसके साथ साथ वो भी बढ़ने लगता है। परंतु ऐसा नहीं है कि हम इस पर जीत नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम बाबा की शिक्षाओं को, बाबा की सावधानियों को अमल में लाते हैं, तो निश्चय हम इससे परे निकल जाएंगे, इससे ऊपर उठ जाएंगे। और इसका एग्जाम्पल है हमारे आदिपिता ब्रह्मा बाबा, मातेश्वरी जगदम्बा, हमारी दादियाँ। बस उन्हें अनुसरण करते हुए हमें आगे चलना है। बस जब हम कर्म कर रहे होते हैं, तो बस ये हमें ध्यान रखना है कि बाबा की कामना क्या है इस संसार की समस्त आत्माओं के लिए। बस उनकी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी पर, अपनी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी को सेट करना होता है। उनकी भावना है, उनकी इच्छा है कि संसार की समस्त आत्माओं को दुख से छुड़ा करके सुख की दुनिया में ले जाएं, उनकी शांति की दुनिया में ले जाएं, उन्हें पतित से पावन बनाए, मुक्ति जीवन मुक्ति दे। और इसके लिए उन्हें कुछ नहीं चाहिए। उन्हें कुछ चाहिए क्या, बस हमें ही उन्हीं की तरह ऐसे इन्हीं ऊंचे विचारों में रहना है। हमें बस सारे संसार के कल्याण के लिए ही आगे बढ़ना है, और हमें इसके बदले बाबा का प्यार तो मिल रहा है ना, बाबा का प्यार, बाबा की पालना, बाबा की प्रोटेक्शन, ये सब कुछ हमें मिल रहा है। तो जब हम निस्वार्थ भाव से बाबा की सेवाओं में आगे बढ़ते हैं, कोई कामना नहीं रखते हैं, और बाबा ने इसके लिए विधि बताई है कि सदा स्मृति में रखो कि करण करावनहार कौन है। बस निमित्त बन के इन आत्मा से, कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ, आत्मा से कर्म कराओ, और करण करावनहार एक पिता है, उस स्मृति में रहो। इस स्मृति में रहकर यदि हम कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, तो एक पिता की आज्ञा पालन करने के एवज में हमें उस पिता का सच्चा प्रेम, सच्चा स्नेह प्राप्त होता है। जब उस पिता से हम सच्चे रूप में, यथार्थ रीति से जुड़ जाते हैं, तो वो अतेंद्रिय सुख, वो उस पिता का प्यार इतना गहरा फील होने लगता है कि इस संसार की सभी वस्तुएं, सभी वैभव, सभी इच्छाएं, कामनाएं उसके आगे तुच्छ लगने लगती हैं। बस उस समय ऐसा लगता है कि जो पाना था सो पा लिया बस, और क्या चाहिए हमें। सारा जीवन का आधार एक पिता ही जैसे बन जाता है, उसके लिए उसके सिवाय और कुछ नहीं चाहिए होता है आत्मा को। आत्मा में दो रूप से स्नेह इमर्ज होता है, एक होता है जब हमें कोई दुख की बात हमारे सामने आती है, कोई हमें कुछ बोल देता है या कोई ऐसी दुखद घटना आ जाती है तो बाबा के सामने जाके रोते हैं, उस समय हम प्यार की फीलिंग करते हैं, या कोई ऐसे गीत सुनते हैं बाबा के या कोई भी जो हमें अंदर से प्यार वो जनरेट करता है, या कुछ ऐसे समय रहते हैं जैसे 18 जनवरी या कोई ऐसे दिवस, उन स्मृतियों के दिनों में हमारे आँख से आंसू आ जाते हैं। लेकिन वो जो प्रेम रहता है वो परमात्म प्रेम नहीं रहता है, वो अपने अंदर का मतलब आत्मिक प्रेम वो इमर्ज होता है। वो जैसे ही वो वैकेशन वो समय वो बीत जाता है, वो दुख की घटनाएं बीत जाती है, वो प्रेम जो फिर मर्ज होता है, फिर समाप्त हो जाता है, वो अस्थायी नहीं रहता है। लेकिन जो परमात्म प्रेम रहता है वो जब वो जो दिव्य प्रेम रहता है उससे हम जब अशरीरी होकर के निस्वार्थ भाव से उसके पास हम जा करके उसे जान कर पहचान कर उसे अपना मान कर हम जब बैठ जाते हैं उनके पास में, जब वो कनेक्शन जुड़ जाता है तो वो जो प्रेम का प्रवाह होता है, जो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है, उस प्रेम में उस सुख में हमारे आँखों से बरबसी अश्रु बहने लगते हैं, वो सच्चा प्यार होता है। इसलिए बाबा बीच बीच में कहते हैं कि बच्चे बाप के प्यार में आंसू आते हैं। आत्मा जन्म जन्मांतर से प्यार की उस प्रभु प्रेम की प्यासी है, जब सच्चे रूप में उसका कनेक्शन जुड़ता है तो उस आत्मा को एहसास हो जाता है, गहरा फीलिंग होती है, तो अनायासी उसकी आंख से अश्रु बहने लगते हैं। रात्रि क्लास में एक दिन जीतू भाई जी एक बहुत अच्छी एक बात बताए थे कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो मेले में कहीं जाता है तो उसे वो बहुत प्रकार के खेल खिलौने देखते हैं, खिलौने तो मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए, सब कुछ इकट्ठा करता है। लेकिन कुछ समय के बाद देखता है कि उसके माता पिता जो होते हैं थोड़े समय के लिए मतलब कि गुम हो गए, फिर उस समय उसे वो खिलौने व्यर्थ लगते हैं, उन्हें ढूंढता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, और जब कोई भी खिलौना उन्हें नीचे सब फेंक देता है। और ऐसी अवस्था में जब उसके माता पिता सामने आ जाते हैं तो उनके गले लग जाता है, चिपक जाता है बिल्कुल। ऐसे हमें उस पिता के बिल्कुल पिता से चिपक जाना है, उनके प्यार में खो जाना है। और जब हम ऐसे अपने जीवन का आधार एक पिता को एक शिव पिता को बनाते हैं तो ऐसी अवस्था में हम सारे संसार का आधारभूत बन जाते हैं सारे संसार के लिए। बस सारे संसार की आत्माओं को उस पिता का प्यार मिले, उस पिता का वर्षा मिले, सभी लोग उसे पहचान ले, उसे जान ले, उसे अपना मान ले, बस इससे मीठी क्रांति, इससे प्यारी क्रांति और क्या हो सकती है। इस मुरलिम बाबा ने आगे और बताया कि हमें पुरुषार्थ का भी कोई आधार नहीं लेना है, पुरुषार्थ के लिए बाबा ने बताया है इसमें कि पुरुषार्थ का भी कोई आधार नहीं लेना है। यदि पुरुषार्थ के लिए भी कोई आधार लेते हैं तो हमारे योग बल में कमी पड़ जाती है। हमें बड़ों से सीखना जरूर है, उनसे सीख कर उनसे ग्रहण कर करके फिर आगे निकल जाते हैं, उनके उनके प्रभाव में नहीं आना है, उन्हें भी सिखाने वाला कौन है, बस उसी के प्रभाव में रहना है हमें। लेकिन एक बात हमें ये भी ध्यान रखना है कि एक के प्रभाव में रहना है, एक से ही सब कुछ रहना है। ये भान में आते आते कहीं हम बड़ों का रिगार्ड न छोड़ दें, उनका सम्मान देना, उन्हें सम्मान देना न छोड़ दें। बाबा ने बताया हुआ है, शिक्षा दी हुई है कि जो भी हमसे बड़े हैं, जो हमें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उनका सदैव हमें सम्मान देना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देना ही चाहिए। एक मुरली में 1992 की फर्स्ट मुरली में एक मुरली है सत्यता की परख, उसमें बाबा ने बताया है कि जब हम अपने जीवन का आधार या पुरुषार्थ का आधार यदि एक बाप के सिवाय कुछ और रख लेते हैं, किसी व्यक्ति को रख लेते हैं, कोई वस्तु को रख लेते हैं, या कोई इच्छाएं कामनाएं को भी अपना आधार बना लेते हैं, पुरुषार्थ का आधार बना लेते हैं, तो वहां से बाप का किनारा हो जाता है। और जैसे ही बाप का किनारा हो जाता है, बाप का आधार हट जाता है, तो आत्मा बिल्कुल निर्बल हो जाती है, आत्मा में कोई ताकत ही नहीं रहती है। इसलिए एक ही आधार पर हमें चलना है, एक बल एक भरोसा, तो ही आत्मा में ताकत आएगी, रूहानी ताकत बढ़ेगी। बाबा ने आगे योग के प्रयोग के लिए बात कही है, हम जैसे जैसे योग के प्रयोग करते रहेंगे हमारी आत्मा में ताकत बढ़ती जाएगी। कोई साधन भी है तो भी हमें योग का प्रयोग करके उस साधनों का सहारा ना ले तो अच्छा है, उसके बदले हम योग का प्रयोग करें। हमें हर दिन हर समय एक न कोई न कोई एक एम एक लक्ष्य लेकर के ही योग करना चाहिए, हमेशा ही कोई न कोई योग का प्रयोग करते रहना चाहिए। तो यदि हम योग के प्रयोग के लिए 21 दिन का भट्टी रखते हैं खुद ही कि इस प्रयोग के लिए या इस कमी कमजोरी के लिए हमें योग का प्रयोग करना है, तब हमें उसमें इंटरेस्ट भी आता है, हम हमेशा उसमें निरंतर एक्यूरेट टाइम पर वहाँ पहुँच जाएंगे, रेगुलर रहेंगे। अगर बिना किसी लक्ष्य के ही हम योग में बैठ रहे हैं तो कभी जाएंगे कभी नहीं जाएंगे, कोई उमंग उत्साह ही नहीं आएगा उसमें, उस योग में बैठने में। इसलिए हमेशा हमें कोई न कोई लक्ष्य लेकर के हमें योग में बैठना होता है। तो अभी हम एक योग के प्रयोग करेंगे, एक योग करेंगे, और ये योग उन लोगों के लिए है जो आज की ज़रूरत है संसार में, जो कोविड पेशेंट है, जो शरीर छोड़ चुके हैं। ओम शांति। मैं आत्मा, अपना फरिश्ता रूप धारण कर इस देह से उपराम होकर इस संसार का अवलोकन कर रहा हूं। ग्लोब के ऊपर से समस्त संसार को देख रहा हूं। चारों तरफ कितना ना दुख और अशांति का वातावरण है, भय का माहौल है, लोग भयभीत हैं कोरोना से, लोग पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई तो हो जो हमें इस दुख से ऊपर उठाए, इस दुख से बाहर निकाले। उनके उस इस दुख और दर्द को अपने हृदय में समेटे, मैं फरिश्ता उड़ चली अपने वतन बाप दादा के पास। बाबा से नैल मुलाकात कर रहा हूं, बाबा हमारे नैनों में देख रहे हैं, सारी संवेदनाओं को, सारी भावनाओं को उन्होंने पढ़ लिया। बाबा हमें शक्तिशाली दृष्टि देते हुए हमें अशरीरी बना दिया है और मैं आत्मा अपने आप को परम धाम में देख रहा हूं, शिव बाबा के सामने। उनसे सारी शक्तियां ग्रहण कर रहा हूं, परम धाम की सारी ऊर्जा मुझ आत्मा में समाती जा रही है। सर्व शक्तियों को अपने में समेट कर मैं आत्मा अपने फरिश्ते स्वरूप में आ गई। और बाप दादा के साथ आकर ग्लोब पर स्थित हो गया। ग्लोब के चारों तरफ समस्त ब्राह्मण परिवार की आत्माएं फरिश्ते रूप में एक सर्कल में, समस्त एडवांस पार्टी की आत्माएं प्रकृति के पांचों तत्वों सहित संसार की समस्त आत्माओं को शांति की, शक्ति की, प्रेम की किरणें प्रवाहित कर रहे हैं। स्वयं बाप दादा संसार की समस्त आत्माओं को। शक्ति प्रदान कर रहे हैं। हमारे दिल से संसार की समस्त आत्माओं के लिए एक संदेश निकल रहा है। हे संसार की समस्त आत्माएं, आप इस समय अकेले नहीं हो। हमारा समस्त ईश्वरी परिवार, समस्त ब्राह्मण परिवार आपके साथ है। हमारा स्नेह, हमारा सहयोग, हमारी दुआएं सदा आप सभी के साथ है। स्वयं परमपिता परमात्मा आप सभी के साथ है। शांति।